জয়নীল প্রেম ধনা করুণা প্রচুর জয়নীল প্রেম ধনা করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর হেন প্রভু
treasure of divine love and who was filled with compassion and mercy. Where has such a personality as Srinivas Acharya gone? Where are my Swarup Damodar and Rupa Goswami? Where is Sanatan? Where is Raghunath Das, the savior of the fallen? Where are my Raghunath Bhatta and Gopal Bhatta? And where is Krishnadas Kaviraj? Where did Lord Gauranga, the great dancer, suddenly go? I will smash my head against the rock and enter into the fire. Where will I find Lord Gauranga, the reservoir of all wonderful qualities? Being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all of this devotee, is in whose association he performed his pastimes, Narottam Das simply weeps. Shri Raghunandan Das Thakur ki, Shri Bamsidas Babaji Maharaj ki, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, 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 Jaya Gopi Janavallabha Girivara Dhari, Jaya Gopi Janavallabha Girivara Dhari, Yashodanandana Brajajanarandana, Yashodanandana Brajajanarandana, Yashodanandana Braja Janarandana, Yashodanandana Braja Janarandana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vallabha Girivara Dhari, Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari, Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Radha Madhava Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Krishna Prabhupada ki, Namaskar, Paramahansa Vijayacharya Stotarshara, Abhay Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami, Srila Prabhupada ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Premse Kausti Krishna Chaitanya Prabho Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Srivastati Gaurava Bhakta Vrinda ki, Jaya Srila Radha Krishna Gopa Gopika, Shyama Kunda Radha, Kundagiri Raj Govardhan ki, Raja Bhumi, Ganda, Vanda, Vanda, Madhura, Dwarikara, Kshetra, Ganda, Padidhan, Yodit, Maya, Pradham, Namaya, Kujaya, Manamaya, Yadavu, Devi, Kira, Tulasi Maharani, Ki, Jaya, Shri Raghunandas, Thakur, Ki, Jaya, Shri Vamshidas, Babaji, Maharaj, Ki, Samaveta, Bhakta, Vrinda, Ki, Jaya, Samaveta, Bhakta, Vrinda, Ki, Jaya, Samaveta, Bhakta, Vrinda, Ki, Jaya, Nitai, Kaura, Premanu, Ki, Jaya,
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Narayanam namaskrityam. Naram chaiva narottamam.
Naram chaiva narottamam.
Devim sarasvatim vyasam.
Devim sarasvatim vyasam.
Sato jayamudiraye.
Sato jayamudiraye.
Dashtapraye shavatresho.
Dashtapraye shavatresho.
Ityam bhagavata sevaya.
Ityam bhagavata sevaya.
Bhagavate uttama shloke.
Bhagavate uttama shloke.
Bhaktirbhavati naishtake.
Krishnaya vasudevaya.
Devake nandanaya cha. Nandagopa kumaraya. Govindaya namo namaha.
Namo
nalina netraya. Venu vadya vinodine. Dadara sudhapana. Shaline vanamaline. Mahabhava swarupastvam. Krishna priya variyasi. Prema bhakti prade devi. Adikatvam namostute. Gita sugita kartavya. Himanye shastra vistarehi. Yasvayam patmanabhasya. Mukha padmat vinistrataha. Srimad Bhagavad Gita Yatharup, Adhyay Satra, Shraddha Ke Vibhag, Shlok Sankhya 28. Ashraddhaya Hutam,
Ashraddhaya Hutam,
Tattam,
Tattam,
Tapas Taptam,
Tapas Taptam,
Kritam,
Kritam,
Cha,
Cha,
Yad,
Yad,
Asid,
Asid,
Asat,
asat
iti
uchyate
partha
na
cha
tat
retya
no
iha.
Ashraddhaya
hutam dattam tapastaptam kritam chayat asadi chate partha na cha tat pretya no iha. Ashraddhaya hutam dattam tapastaptam kritam chayat asadityuchyate partha na cha tat pretya no iha. Ashraddhaya hutam dattam tapastaptam kritam chayat asiduchyate partha na cha tat pretya no iha. Ashraddhaya, shraddha rahi, hutam, yajna mein ahuti kiya gaya, dattam, प्रदत्त तपः तपस्य तप्तम संपन्न कृतम किया गया च भी यत् जो असत् छोटा इति इस प्रकार उच्यते कहा जाता है पार्थ हे प्रथापुत्र न कभी नहीं च ही
तत् वह प्रेत्य
मरकर
न उ न तो इह इस जीवन में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तात्पर्य, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम ज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य नवभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदार्थिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरवरकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथन्वितं तं सचिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमाम विष्णुपादाय कृष्णवृषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नाम। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे पञ्चाकल्पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाङ्गदिव्यछविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसत्पराय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो। आराध्य भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनं म्याकाचिदुपासना व्रजवधूपर्गेण वा कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणमलं प्रेमापमार्तो महां श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधारान परम्। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तराधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिभ्ये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्। अस्तित्यक्षते पार्थ नच तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो इस अध्याय में भगवान तीन गुणों में स्थित तप, दान, कर्म आदि बतलाते हैं और अंत में कहते हैं कि शायद तप रजोगुण में हो, सतोगुण में हो या तमोगुण में हो, अगर ये कार्य आप श्रद्धा के बिना करते हैं तो सब निष्फल है, व्यर्थ है। नायम लोके परलोके, ना इस लोक में ना परलोक में उसका कुछ आपको उपयोग हो सकता है। तो प्रभुपाद आत्मा बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है इस चीज के लिए भक्तों का संग या किसी उत्तम भक्त का मार्गदर्शन, कि जिसके द्वारा हम इस श्रद्धा को प्राप्त कर सकें, क्योंकि भगवान के भक्तों के संग में ही श्रद्धा प्राप्त हो सकती है। श्रद्धा को प्राप्त करने का अन्य दूसरा मार्ग है ही नहीं। श्रद्धा सब पे विश्वास कर ले सुदृढ़ निश्चय, कि जब श्रद्धा हो तो व्यक्ति में विश्वास उत्पन्न हो जाता है जिससे वो निश्चय या निश्चय को प्राप्त करता है। और ये श्रद्धा केवल प्राप्त होती है भगवत भक्तों के संग में। इसलिए प्रभुपाद यहां पर बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही एक मार्ग है। तो फिर भगवान के जो भक्त है या ये प्रामाणिक गुरु है, ये कैसे रहते हैं, यह हमें देखना पड़ेगा। प्रभुपाद के ग्रंथों में से कुछ कोटेशन निकाल के एक पुस्तक बनाई गई है, गुरु तथा शिष्य करके, और उसमें गुरु के लक्षण क्या है, किस व्यक्ति को गुरु करके हमें अपने जीवन में स्वीकारना है, इसके बारे में पूरी तरह से दिया गया है। तो जो भी व्यक्ति ऐसे प्रामाणिक गुरुओं को स्वीकारना चाहता है उसे पहले उन तत्वों का अभ्यास करना है कि किस व्यक्ति को हम गुरु करके पहचान सकते हैं या किसको अपने जीवन में हम अपना सकते हैं। कि भगवान के भक्त और उनके कार्य, इनको जानना बहुत ही कठिन है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान भुजा, कि वैष्णवों की क्रिया है या कार्यकलाप अपनी मति से हम नहीं जान सकते। अगर उसे हम जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अपराध कर बैठेंगे। इसलिए हम सुबह पढ़ रहे थे कि भगवान उद्धव को बताते कि अपने मन की या वाचा की क्या स्थिति होनी चाहिए। उसके तात्पर्य में बताते हैं कि जब तक हम हर एक जीवात्मा के प्रति आदर या सम्मान व्यक्त नहीं करते तब तक ये वाणी के ऊपर हम नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकते। मन को या मन का दमन नहीं कर सकते, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमें बार बार इस भौतिक जगत में आने के लिए बलपूर्वक प्रयास करती है। और अपने बुद्धि से या अपने मति से अगर हम किसी वैष्णव को जानने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपराध कर बैठेंगे। तो इसलिए शास्त्रों का ही आधार लेना आवश्यक है, क्योंकि भक्तों को पहचानना बहुत कठिन है। जैसे बंसीदास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने इन बाबा जीओं को बहुत
अच्छी पट्टी पड़ाई थी सब बाबा जी, क्योंकि उस समय लोग बाबा जी के नाम पे बहुत सारा ढोंग किया करते थे, स्त्री संग, बाद में चारों नियमों का भंग और सारी इंद्रिय तृप्तियों के चीजों में आसक्त रहते थे और केवल मिथ्याचारी थे। तो ऐसे लोगों को भक्ति सरस्वती ठाकुर बहुत उनकी कान सुनाई किया करते थे। लेकिन उनके समय ही एक और एक बाबा जी थे, नाम था बंसीदास बाबा जी, जिनके प्रति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अनन्य आदर था, क्योंकि बंसीदास बाबा जी इतने कृष्ण भावना भावित थे कि उसका कुछ हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। वे नदिया में ही रहते थे, वहीं पे निवास करते थे और उनके छोटे से विग्रह थे गौड़ाहरी के, उनकी हर रोज सेवा किया करते थे, कभी भिक्षा मांगते नहीं थे, जो आया सो उसको स्वीकारते थे और उसका ही भोग बनाकर भगवान को दिखा के उसको ग्रहण करते थे। कभी खुद के लिए उन्होंने एक झोपड़ा भी नहीं बनाया, जहां पे जगह मिली रहे और अपना भजन करते रहे। और बाह्य सांसारिक चीजों से या किसी व्यक्ति से उनके मन में कभी भी आसक्ति नहीं थी या किसी से भी वो बात नहीं करते थे, जब भी देखो अपने भजन में व्यस्त रहते थे। उनके एक शिष्य ने उनके लिए एक छोटा सा कुटीर बांध के दे दिया, तो बाबा जी आप यहाँ रहा करो, तो उस कुटीर का कभी दरवाजा भी नहीं लगा, ऐसे निकल पड़ते। और उनके एक बार जो गौर नेता थे उनके कुछ ऑर्नामेंट्स जो था कुछ चोरों ने चुरा लिया और लेके चले गए, तो आके सारे लोग पूछने के बाबा जी को कि आप ध्यान क्यों नहीं देते, दरवाजा बंद क्यों नहीं रखा करते, चोर चोरी कर रहे। तो बोले कि जिसका घर है अगर उसको उसकी परवाह नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं तो घर में रहता नहीं, रहते ये दोनों, अगर इनको ही परवाह नहीं है इनके तो मैं क्या कर सकता हूँ। और उन्होंने जान लिया कि कोई किस व्यक्ति ने चोरी की है, उसके घर पे चले गए और बोले कि भाई तुमने जो चोरी किया उसको वापस ले रहा। तो व्यक्ति बहुत गुस्सा हो गया और उनको उसने अपने घर से धक्का मार के निकाल दिया, तो उसी समय उनका पैर में चोट आ गई और एक पैर ही उनका चला गया काम से। लेकिन फिर भी किसी के प्रति अपराध नहीं, किसी को कुछ बोला नहीं, कुछ ठीक है, बोलो गौरहरी की इच्छा, जो उसको चाहिए जो करना है उनको कर रहे हैं और फिर अपनी सेवा करते हुए भजन करते हुए घूम रहे थे। नदिया छोड़कर वो कभी भी कहीं पे भी नहीं गए, बस एक बार खेतोरी ग्राम गए थे और वहां से वापस आए, उसके बाद कभी नदिया या नवद्वीप छोड़ के वो कभी बाहर नहीं गए थे। और जब भी देखो भगवत चिंतन भगवत स्मरण में इतने मग्न रहते थे कि बाह्य स्वरूप से किसी चीज को उनकी कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जब ये वृद्ध हो गए, शरीर जर्जर था, कुछ कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो उस समय उनको एक मंदिर दिया गया कि आप यहीं पे वास करो, यहीं पे भगवान की सेवा करो। तो उनके और दो तीन विग्रह थे, राधा कृष्ण के, गौर निताई के और गौर गधाधर, जिनकी वो सेवा किया करते। और उसी मंदिर में एक वृक्ष था जिस वृक्ष के ऊपर हर रोज केवल दो ही फूल निकलते थे। उस वृक्ष पर चढ़कर, हालांकि 80-85 से भी ज्यादा उनकी आयु थी, लेकिन 10-20 साल के बच्चे के समान चढ़ जाते थे पटाख से पेड़ के ऊपर और फूल निकाल के भगवान की हर रोज सेवा करते। एक दिन पेड़ के ऊपर से भी गिर गया तो उनका चलना उठना सभी बंद हो गया। तो उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने एक शिष्य को उनकी सेवा के लिए भेजा, तो किसी से सेवा नहीं ली उन्होंने, बोले नहीं मेरी नहीं सेवा, तुम्हें सेवा करना है तो इन विग्रहों की कर, क्योंकि अभी मैं तो बहुत कठिन है मुझे उनकी सेवा करना, तुम सेवा करो। और एक दिन देखा कि ये गौर नेता को डांट रहे, तो साहब आश्चर्यचकित हो गया, आज इनको क्या हो गया कि ऐसे गौर नेता को डांट रहे ऐसी, बोले अच्छा है आपका भी आपके जीवा के ऊपर का नियंत्रण निकल गया, मैं यहाँ पे आपको भोग चढ़ा रहा हूँ, आप खा नहीं रहे हो, वहां वृंदावन में वो मठ वाले आपको स्वीट राइस खिला रहे हैं आज, इसलिए आपको मेरे पास खाने की इच्छा नहीं है, भूख नहीं है आपको। बोलो ठीक है। सुना सुनी ठाकुर के जो शिष्य थे वो बोले कि क्या बोल रहे आज इनको, कैसे क्या हो रहा है। भक्ति सेवन स्वामी ठाकुर ने वहां से ट्रंक कॉल किया वृंदावन और इंक्वायरी की कि आज मठ में ऐसे ऐसे अपने भगवान को स्वीट राइस खिलाया था। तो बोले हाँ आज एक व्यक्ति ने भूख चढ़ाने के लिए लाके दिया था, तो आज कभी नहीं बनता ऐसा केसर युक्त स्वीट राइस बनाए और भगवान को हमने चढ़ाया। तो बंसीदास बाबा जी के साथ उनके विग्रह बोला करते थे, एक दुनिया के किसी व्यक्ति से बात नहीं करते थे, बात जो भी करना है उनको गौर नीता के सामने बैठ जाते और बातें करते रहे। और कहा जाता था कि वे कि बताया जाता है प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा कि आज भी नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की नित्य लीला चल रही है और जो पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में प्रगत है वो अपने आंखों से उस लीला को देख सकता है, उस लीला में भाग ले सकता है। और वंशीदास बाबा जी इसी शतक में होके गए, वे इतने प्रगत थे कि वे हर रोज चैतन्य महाप्रभु के उस संकीर्तन आंदोलन में, चैतन्य महाप्रभु का जो संकीर्तन शोभा यात्रा चलता था उसमें हर रोज भाग लेते और कीर्तन में पूरी तरह से मदमस्त हो जाते। अगर ऐसे व्यक्ति है तो केवल हरि नाम लेना आसान है, क्योंकि इस दुनिया से कुछ उनको लेना देना है ही नहीं और किसी रूल रेगुलेशन की उनको परवाह नहीं। जैसे भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि इस पूरे संसार में दो ही व्यक्ति सुखी है, कौन? एक है मूर्ख जिसको कुछ दुनिया से लेना देना होता नहीं है और दूसरे परमहंस, उनको भी इस दुनिया के रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं होता और बाकी सब इन बिटवीन जो है वो सब दुख भुगत रहे, दो ही व्यक्ति सुखी है। और भगवान के भक्त समाज की नजरों में पूरी तरह से मूर्ख ही रहता, हर व्यक्ति गया पागल आदमी इतना पढ़ा लिखा हुआ हाथ में माला लेके घूमता है, जाओ थोड़ा काम करो, बिजनेस करो, पैसा कमाओ। ऐसे ही परसों हुआ था, एक हमारा डिवोटी चौपाटी टेम्पल का एक ब्रह्मचारी ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन ले गया था और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते कई लोग होते हैं कि ऐसे फालतू में खिंचाई करना उनकी आदत रहती है, अपनी शान पट्टी पढ़ाते हैं, इतने जवान हो जाके थोड़ा काम भी करो, अगर चाहिए तो मुझे कांटेक्ट करो, ये मेरा विजिटिंग कार्ड रखो तुम्हारे पास, और कितना पेमेंट चाहिए तुमको। तो ब्रह्मचर्य ने वो कार्ड लिया, उसके हाथ में वापस दे दिया, बोले जिस कंपनी का कार्ड लेके घूम रहे हो ना, इस कंपनी का मैं जनरल मैनेजर था, अब तुम जो पेमेंट पूछ रहे हो अभी भी जाके ये मेरा नाम था और मंथली मैं 85,000 इसी कंपनी के अकाउंट से विड्रॉ करता था। वो हपक गया, बोले क्या बात कर रहे, सर गलती हो गया, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें इंटरनल जॉब देता हूं, आज ज्वाइन करो। कि लोगों को लगता है कि ये पागल लोग है, इनको कुछ समझना नहीं इसलिए लग गए इसके बीच, लेकिन चैतन्य चंद्र चैतन्यमृत में कहा गया है कृष्ण से ही, कृष्ण भक्त से ही बड़ो चतुर, जो कृष्ण भक्त है वही सही मायने में चतुर व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है। यजंती सुमेधसा, केवल बुद्धिमान व्यक्ति इस यज्ञ को अपने जीवन में ले सकता है, किसी मूर्ख का काम नहीं है, चाहे दुनिया की नजर में वह मूर्ख क्यों ना हो। और लोगों को लगता है कि वे मूर्ख है क्योंकि जहां पे दुनिया सो जागती है वहां पे लोग सो जाते हैं, जरूरत नहीं है, और सही है ना, प्रातः काल में सब सोए रहते हैं और ये उठ के खड़े हो जाते हैं, सालों संसार उन्होंने क्या पागल आदमी है, खुद भी नहीं सोता दूसरों को भी नहीं सोने देता। लेकिन काला भाई ये चीजों करने में भक्त बहुत आगे रहता है। ये सब काल भाई है, आज के लिए सबको, सब लोग तो सूर्यवंशी है, जब सूरज उगता है तो इनके वंश की शुरुआत हो जाती है, सूरज की पहली किरण इनको उठा देती है। लेकिन भक्त रहते हैं वो सूरज को भी उठा देते हैं कि भैया अभी आ जा, डेढ़ घंटा में पहले ही जाग रहा हूं तेरे लिए। और जो बहुत गंभीरता से इन सारी चीजों को अपने जीवन में अपनाते हैं, वही व्यक्ति मार्गदर्शक बन के दूसरों को बता सकता है, सिखा सकता है, और ऐसे व्यक्ति को हम गुरु करके अपने जीवन में स्वीकार सकते हैं। और एक महान भक्त थे जिनका स्थिरोभाव दिन है, रघुनंदन ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु के निजी पार्षदों में विशेष करके श्रीखंडा के तीन भाई थे, मुकुंद दत्त, माथुर और नरहरि ठाकुर, नरहरि चक्रवर्ती जिनको कहा जाता है। वो श्रीखंडा में रहते थे और हर साल रथ यात्रा के समय अपने साथ अन्य भक्तों को लेकर जगन्नाथ पुरी आते थे और बहुत सुंदर रूप से कीर्तन करके जगन्नाथ जी को और महाप्रभु को प्रसन्न करते। और मुकुंद दत्त के बारे में कहा जाता है कि वो इतने इलेवेटेड थे कि एक बार वो नवाब के यहाँ वैद्य थे, बादशाह के दरबार में। तो कोई एक व्यक्ति नवाब के लिए व्यंजन लेके आया, सॉरी चामर, और चामर में से उन मयर पंखों को देखकर को भगवान की नहीं याद आई कि वो बेचारे अपने आप को रोक नहीं पाए और पूरे अष्टविकार उनमें जागृत हो गए और वो चक्कर आके गिर गए। बादशाह ने देखा कि ये तो वैद्य है और इसको सडनली क्या हुआ, पूछे कि क्या हुआ, बोले तो कुछ नहीं, मुझे ऐसी फिट्स आते हैं कभी कभी तो उसकी वजह से मैं गिर पड़ा। लेकिन बादशाह को मालूम था कि ये व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, तो उसने कहा कि ठीक है तुम अब चले जाओ। फिर अपने कई सेवकों के साथ उनको घर वापस भेज दिया। फिर कुछ दिनों के पश्चात मुकुंद दत्त को एक छोटा लड़का था जिसका नाम था रघुनंदन, जब ये पूरी आए थे जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए, तो महाप्रभु ने मुकुंद दत्त को देखकर पूछा था कि हे मुकुंद, मुझे सही सही बता कि तुम रघुनंदन के पिता हो या रघुनंदन तुम्हारा पिता है। तो रघुनंदन ठाकुर बहुत प्रसन्न हुआ, बोला, बोले महाप्रभु को कि महाप्रभु, ये रघुनंदन जो है ना, ये मेरा पिता, क्योंकि इस पुत्र के कारण मुझे भगवत भक्ति प्राप्त हुई, भगवत साक्षात्कार हुआ। चैतन्य महाप्रभु बोले हाँ ये सही है, तुम जो कह रहे हो इसमें सत्यता है। क्योंकि एक दिन मुकुंद दत्त को बादशाह ने बुलाया था, इसलिए तुरंत उनको जाना था। तो हरिराज उनके वंश परंपरा में एक विग्रह था, जिस विग्रह गोपीनाथ जी का विग्रह जिनकी सेवा वे किया करते थे हर रोज, और उस दिन उनको जल्दी जाना था इसलिए उन्हें रघुनंदन को बुलाया। और जैसे हम देखते ये छोटे बच्चे अपने बाप के ऊपर सिक्योरिटी जैसे रहते हैं, बाप जो करता है वो चीज करने का प्रयास करते हैं तुरंत, इसलिए बहुत संभल के रहना चाहिए जब तक बच्चे छोटे रहते हैं, क्योंकि हर एक चीज को रिपीट कर देते हैं। तो रघुनंदन हर रोज अपने पिता के हर एक कार्य को देखता था और वो इमिटेट करता था। तो एक दिन मुकुंद दत्त को मालूम पड़ेगी, ठीक है अभी मैं नहीं कर सकता, कम से कम मेरा बच्चा तो करेगा। रघुनंदन को बोला, रघुनंदन को बोला कि रघुनंदन अभी तुम्हारी माँ तुम्हें भोग बना के देगी, गोपीनाथ जी को भोग देना और उसके पश्चात मैं जब आऊंगा तब देख लेंगे आगे। रघुनंदन बोला ठीक है, छोटा सा बच्चा था, जैसे ही मैया ने थाली ला के दी, भोग लगाने के लिए ले ली, भगवान के सामने रखी, आंखें बंद कर दी और बोले भगवान खा लो। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, कुछ भी नहीं खा रहे भगवान। तो बेचारा रोना चालू कर दिया, देखो भगवान अब खा लो, हर रोज आप मेरे पिताजी के हाथ से तो खाते हो और आज मुझे पिताजी ने बोला आपको खिलाने के लिए और आप नहीं खा रहे हो, पिताजी आके मुझे डांटेंगे, आप खाओ ना करके रोना चालू कर दिया भगवान के सामने। और इतने निष्पाप वृत्ति से और पवित्रता से शुद्धता से वो भगवान को पूछ रहा था कि आप खाओ खाओ खाओ, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि भावग्राही बहुत, क्या होता है भावग्राही गोविंद जनार्दन, तो रोक नहीं पाए अपने आप को, बस आ गए बोले रो मत मैं खा लेता हूँ और पूरा खा लिया, कुछ भी नहीं बचा, बस रघुनंदन ने थाली बाहर ली रख दी और खेलने के लिए चला गया। कुछ समय के बाद मुकुंद वापस आए, उन्होंने पूछा कि रघुनंदन चलो प्रसाद खिला मुझे, बोले कौन सा प्रसाद, तो तुमने भोग चढ़ाया ना, हाँ बोले खा लिया गोविंद ने, तो खा लिया। मुकुंद सोचने लगे कि ये बच्चा झूठ तो नहीं बोल सकता और खुद तो नहीं खा सकता, निश्चित रूप से भगवान की कुछ लीला देखना पड़ेगा। बोले रघुनंदन ठीक है, उन्होंने अपने पत्नी को बोला कि तुरंत कुछ लड्डू बना और रघुनंदन को दे दो ताकि वो भगवान को खिलाए। बोले ठीक है, तो रघुनंदन तुरंत वापस चला गया और थाली ली भगवान के सामने रखी और भगवान को कहा भैया खा लो, बहुत समय हो गया खा नहीं रहे, फिर से रोना चालू कर दिया। गोपीनाथ जी बोले अरे अभी अभी तो पेट भर के खाया मैं, फिर लड्डू खिला, बोले मुझे मालूम नहीं आपको खाना पड़ेगा। नाथ जी बोले ठीक है, बैठ गए लड्डू लिया मुंह में डाला और सामने देखो तो मुकुंद खड़ा है, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, अभी खाए रखे तो वैसे हाथ में वो आधा लड्डू और मुंह में आधा लड्डू। आज भी अगर आप श्रीखंडा जाते हैं जहां पे मुकुंद दत्त का घर है, उस घर में आज भी वो विग्रह है कि जिस विग्रह के हाथ में आधा लड्डू है और आधा मुंह, आज भी श्रीखंडा ये कटरा से 6-7 माइल पर है, कटवा जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का संन्यास है वहां ज्यादा है, ज्यादा दूर कटवा मेरे ख्याल से 80-90 किलोमीटर से पार है, कि ट्रेन से जाना पड़ता है या बस, बस से 7-8 घंटा लगता है, रास्ता खराब है बहुत, हाँ लास्ट स्टेशन है वो पैसेंजर जाता है ना कलकत्ता से जो आने वाला है कटवा के लिए, एक लाइन है जो नवदीप से होकर जाती है, वहाँ से 4-4.5 घंटा लगता है ट्रेन से। तो बस आज तक वो विग्रह है वहां पे और उसी दिन से मुकुंद बोले कि आज से तुम ही गोपीनाथ की सेवा करो, और उस दिन से रघुनंदन जी गोपीनाथ जी की सेवा कर रहे थे। और उनके आंगन में भी एक ऐसा वृक्ष है कदम्ब का कि जिसे हर रोज पूरा 12 महीना केवल 2 ही फूल आते हैं, 2 से ज्यादा नहीं और कम भी, जो फूल निकाल के वहां पर भगवान की वो सेवा करते हैं। और कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु के और एक निजी पार्षद थे अभिराम गोपाल ठाकुर, उनके पास एक चाबुक रहता था जिसको कहते थे मंगल, जिसपे वो चाबुक पड़ता था बेचारा कृष्ण भावना प्राप्त होने के कारण मदमस्त हो जाता, पागल होके नाचना शुरू कर देता, और उनके इतनी पोटेंसी थी कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को शुद्ध भक्त कहलाता है और उन्होंने आकर अगर आपको दंडवत किया तो बस उसकी, और वो नहीं है तो उसकी पालकी निकलती थी, 4 लोगों के कंधों पे से उस व्यक्ति को लेकर जाना पड़ता था, इसलिए लोग डरते थे उनके सामने जाने के लिए कि अपने आप को भक्त करके उनके सामने जाने के लिए। तो एक बार जब उन्होंने ये सुना कि रघुनंदन बहुत ही परम उच्च कोटि के भक्त है कि जिनके हाथों से भगवान ने स्वयं खाया है, तो बोले चलो रघुनंदन के दर्शन करें। और जैसे ये बात श्रीखंडा पहुंची सब डर गए, बोले रघुनंदन हमारा बच्चा है, बोले इसको छुपाओ कहीं पे, ये सामने नहीं आना चाहिए। तो सब अरेंजमेंट कर ली और अभिराम गोपाल ठाकुर आए, बोले कहाँ है रघुनंदन, रघुनंदन ठाकुर के मुझे दर्शन कर लिए, छोटा सा बच्चा और ये एजेड, बोले मुझे रघुनंदन ठाकुर के दर्शन कर। सबने बोला कि रघुनंदन नहीं है, बाहर गांव चला गया, वो आएगा तब हम उसको आपके पास लेके आएंगे। तो गांव के बाहर एक जगह थी जहां पे अभिराम ठाकुर रुके थे, वहां पे कीर्तन शुरू हो गया। क्यों? चैतन्य महाप्रभु की भक्तों की एक खासियत थी कि वो जब भी इकट्ठा होते थे दूसरा कुछ करते ही नहीं थे, बस ऐसा टमल्चियस कीर्तन कर लेते कि लोग पागल हो जाते थे क्या हो रहा है करके। और बस अभिराम गोपाल ठाकुर ने अपना कीर्तन शुरू किया और कीर्तन करते करते वो चाबुक भी मार लेते, तो जिसको भी बैठ जाता था बेचारा और मदमस्त हो जाता था कीर्तन। और जैसा ये कीर्तन चल रहा था इतना बढ़िया चल रहा था कि सब लोग भूल गए कि रघुनंदन घर में है और वो भी सुन रहा है करके। रघुनंदन को भी रहा नहीं गया, भगवत नाम का इतना कीर्तन हो रहा है और भगवान के इतने सारे भक्त इकट्ठा एक साथ में, वो बेचारा अपने आप को रोक के नहीं पाया, सीधा चला आया वहां आके, वहां पे इतना भाव विभोर होकर नृत्य करने लगा कि उस नृत्य करते समय उसके पैर में एक नूपुर थे, वो नूपुर उड़ के चले गए और सीधा एक सामने कुंड था, उस कुंड में गिर गया। आज भी उस कुंड को नूपुर कुंड कहलाता है, जब भी कोई भक्त वहां पे जाते तो स्नान कर लेते। और जब अभिराम गोपाल ठाकुर ने उनको देखा तो बिना बताया उनको मालूम पड़ा कि यही रघुनंदन है, और फट से दंडवत आ गया, सब लोग हक्का वक्का हो गए, वहीं पे रुक गए, अभी क्या होगा मालूम नहीं। तो रघुनंदन ने उनको उठाया और आलिंगन दे दिया और बस दोनों के भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। यही रघुनंदन नरोत्तम दास ठाकुर ने जब खेतुरे ग्राम में फर्स्ट टाइम गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट किया था तो श्रीखंडा से कई भक्तों को लेकर वे वहां पे आए और चैतन्य महाप्रभु के इस प्रचार वृक्ष के एक शाखा के जो फल है, जिन्होंने और एक ब्रांच अपने से एक शाखा उत्पन्न किया और जिसके द्वारा आज भी वहां पर प्रचार हो रहा है। आज भी अगर आप श्रीखंडा जाते हैं तो उनके जो वंशज है वो आज भी उस गोपीनाथ विग्रह की सेवा करते हैं और वहां पर लड्डू प्रसाद भी मिलता है। तो भगवान के भक्त ऐसे रहते हैं, ऐसे ही भक्त केवल नाम के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते, क्योंकि उनकी पूरी मति भगवान में ही रहती है और बाकी का जो जिम्नास्टिक भगवान ने दिया है वो हम सब लोगों के लिए, क्योंकि हमारी मति उतनी नहीं है, पहले ठोक ठाक के पीट के वो फार्मा बनाना पड़ता है, जब वो फार्मा बनेगा तो उसमें ढलाई होगी और फिर ढलाई होगी तो मूर्ति निर्माण होगी। तो फार्मा बनाने के लिए फिर रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु दिया, भाई साहब पढ़ो, कुछ डूज है अंडूज है उनको देखो और अपने जीवन में उतारो, ताकि फिर जाके एक दिन ऐसा हो कि केवल नाम के प्रति हमें आ सकती, कि नाम सुधार स करिया पान हकति विनोद कार्य, विनोद बोलते कि केवल एक ही कार्य रहे जीवन में, इस नाम सुधा का रसपान करें, वो समय आना बहुत दूर है हमारे। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि जब किसी शुद्ध भक्त का अगर संग मिले तो निश्चित रूप से इस सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं, और इसलिए बार बार शास्त्र में कहा है कि साधु संग सर्वशास्त्र पे लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, कि साधुओं का संग करो साधुओं का संग करो, कि लवमात्र साधु से संग से ही सर्व सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है तो भगवत नाम के प्रति आसक्ति। तो आइए इन दोनों वैष्णवों के चरणों में प्रार्थना करते हैं ताकि उनको जो भगवत नाम के प्रति आसक्ति थी एक कण मात्र तो हमें प्राप्त हो ताकि हमारा जीवन सफल हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बंसीदास बाबा जी महाराज की, श्री रघुनंदन दास ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की जय।